कथा में ये बात आई है कि जब श्री राम समुद्र पार करना चाहते हैं तो समुद्र ने उन्हें मार्ग नहीं दिया और श्री राम ने क्रोध किया और समुद्र को सुखाने के लिए अपना बाण चढ़ाया। तो समुद्र को सुखा करके ही वे जा सकते हैं। एक ही उपाय है कि समुद्र को सुखाएं और इस प्रकार पूरी वानर सेना लंका में जाए। तो समुद्र ने जब देखा कि ये तो विनाश कर देंगे, तब वो जो है उनके शरण में आया, भयभीत होकर के शरण में आया और राम से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तब समुद्र ने श्री राम से जो है दो प्रकार की सेवाएं बताई कि मैं आपकी दो प्रकार से सेवा कर सकता हूं। एक सेवा तो यह है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार पानी के ऊपर भी चले जाइए, तो समुद्र के पास ऐसी शक्ति है, अगर समुद्र चाहे तो आप समुद्र के ऊपर ऐसे चल सकते हैं जैसे जमीन में आप चलते हैं। तो समुद्र ने कहा श्री राम से कि आप अपनी सेना के साथ आप मेरे ऊपर ऐसे भी जा सकते हैं जैसे जमीन में आप चलते हैं और आप समुद्र पार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि समुद्र को सुखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो समुद्र को अगर सुखाएंगे तो समुद्र का ही जीवन समाप्त हो जाएगा। तो समुद्र ने जो है एक सुझाव ये दिया कि मेरी भी रक्षा हो जाएगी और आप सेना के सहित समुद्र को भी पार कर जाएंगे, तो मैं आपको ये सुविधा देता हूँ, पहली सुविधा ये देता हूँ कि आप मेरे ऊपर उसी प्रकार से चलिए जैसे जमीन पर चलते हैं और आप जो है पार कर जाइए। एक ये सुविधा है और दूसरी सुविधा समुद्र ने दी कि आप चाहें तो आप पुल तैयार करिए मेरे ऊपर, आप एक पुल बनाइए पत्थरों का, पर्वत शिखरों का आप पुल बनाइए और उस पुल के ऊपर से आप अपनी पूरी सेना के साथ चले जाइए। लेकिन फिर समुद्र ने कहा कि ज्यादा अच्छा यह है कि आप पुल बनाएं, क्योंकि पुल बनाने से आपका जो यश है वो काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा आश्चर्य है। अगर श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार कर जाएं पैदल, मतलब जमीन की तरह, आश्चर्य तो है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य क्या है कि पत्थर और जो पर्वत के शिखर हैं वो समुद्र के ऊपर तैरेंगे और उनके ऊपर राम की सेना चलेगी, और भी बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि एक तो पत्थर तैरे, आप तैरते हैं पानी के ऊपर तो आश्चर्य नहीं है, पत्थर तैरा पानी के ऊपर तो बड़ा आश्चर्य है, और पत्थर के ऊपर बड़े बड़े पर्वत के आकार के बानर चलेंगे, कितना बड़ा आश्चर्य है। तो समुद्र कहता है कि मेरी प्रार्थना तो यह है कि आप पुल बनाइए, क्योंकि अगर आप वैसे पार कर जाएंगे समुद्र के ऊपर जमीन के तरह चल करके, तो ये बात तो जो है आगे चल करके केवल कही जाएगी और सुनी जाएगी, दिखाई तो कुछ नहीं देगा, लोग केवल कहेंगे सुनेंगे कि ऐसा इस तरह से पार किया, लेकिन उसमें लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पुल तैयार करेंगे तो वे जो पत्थर और पर्वत के शिखरों का जो बना हुआ पुल है वो आगे चल करके भी दिखाई पड़ेगा सबको। तो बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये जो पत्थर है, ये पानी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, ये केवल इस समय के ही लिए नहीं है, बल्कि आगे भी, आगे समय के लिए भी जो है ये पुल बना रहेगा। पानी के ऊपर सोचिए पत्थरों का एक पुल बने बिना किसी आधार के, कितना बड़ा आश्चर्य। तो समुद्र कहता है कि मैं आपकी दो प्रकार की सेवा दे सकता हूं, लेकिन दूसरी प्रकार की सेवा में आपका यश ज्यादा है, ज्यादा आपका ज्यादा यश है, क्योंकि इसमें राम का यश है। हालांकि वैसे समुद्र की योग्यता है, समुद्र का ही गुण है कि समुद्र ने चाहा तभी ये पत्थर जो है पानी के ऊपर तैरे, और इन पत्थरों के ऊपर भी बड़े बड़े बानर मतलब चले। तो समुद्र का गुण है, राम का क्या गुण है? नहीं, राम का गुण है, क्योंकि समुद्र जो है विवश हो गया, तो समुद्र को विवश किसने किया, समुद्र को इतना कंट्रोल किसने किया, कौन कर सकता है समुद्र को इतना कंट्रोल? तो राम ही कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में गुण समुद्र का नहीं है, राम का गुण है। तो समुद्र ने कहा कि आप जो है ये करिए, ये मैं चाहता हूं। अब देखो ये कैसी भक्ति की भावना है, समुद्र के अंदर ये भक्ति की भावना है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ऐसे आप निकल जाएंगे है? तो आपका ज्यादा गुण नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर पुल जो है अगर बना रहेगा पुल, तो आगे चल करके भी लोग देखेंगे, तो हजारों सालों तक लोग देखेंगे। तो समुद्र ने जो है ये जो है भगवान को सुझाव दिया कि आगे चल करके दिखाई पड़ेगा, लेकिन अब वो पुल क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आगे चल करके जब श्री राम ने रावण का वध किया और फिर अयोध्या में वापस आ गए, अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ, और कुछ समय के बाद, ये तो नहीं बताएगा कि कितने समय के बाद, कुछ समय के बाद श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या से लंका जाते हैं कुशल पूछने के लिए, विभीषण की कुशल पूछने के लिए राम लंका जाते हैं, और विभीषण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री राम को प्रणाम करते हैं, अपनी कुशलता बताते हैं। लेकिन फिर विभीषण ने श्री राम से एक प्रश्न किया, उसने कहा कि आपकी आज्ञा से हमारे लंका के जो राक्षस हैं ये मनुष्यों को नहीं खाएंगे। श्री राम ने आज्ञा दी थी कि आपके राज्य में कोई भी राक्षस मनुष्यों को नहीं खाएगा, खाना है तो खाओ, हाथी है, शेर है और दूसरे पशु खाओ, लेकिन मनुष्यों को नहीं खाना। तो विभीषण ने कहा कि हमारे जो लंका के राक्षस हैं ये मनुष्यों को नहीं खाएंगे, लेकिन आपने जो पुल बना दिया है तो मनुष्य लोग ये सोच करके कि अब हमें कोई भय नहीं है राक्षसों से, क्योंकि श्री राम के आदेश से ये राक्षस लोग हमें नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर आएंगे मनुष्य लोग, यहाँ पर आएंगे और हमें तंग करेंगे। तो श्री राम ने विचार किया कि हाँ ये बात तो सही है कि फिर यहाँ राक्षसों की लंका में मनुष्य लोग आएंगे, क्योंकि मैंने पुल बना दिया है। तो श्री राम पुष्पक विमान से आकाश में गए और दो बाण मार करके समुद्र के तीन टुकड़े कर दिए। तो श्री राम ने ही जो है इस पुल के तीन टुकड़े किए थे, ताकि कोई भी मनुष्य लंका में ना जाए, राक्षसों की लंका में ना जाए। तो इस तरह से ये वर्णन आता है कि वो जो पुल है वो श्री राम ने स्वयं ही तोड़ दिया। और पुल कितना लंबा कितना चौड़ा था आप अंदाजा लगाइए, ये श्री राम का कितना बड़ा यश है। लंबा कितना था, कितनी दूरी है, 100 योजन, भारत और लंका के बीच में 100 गज का समुद्र है, तो 1200 किलोमीटर, तो 1200 किलोमीटर का जो है लंबा पुल, बिना खंभे के, बिना आधार के, और चौड़ा कितना, 10 योजन, 10 योजन का मतलब 120 किलोमीटर चौड़ा, 120 किलोमीटर चौड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी राम की, बहुत बड़ी सेना थी, तो उसके लिए जो इतनी चौड़ाई, पुल की इतनी चौड़ाई की आवश्यकता थी कि बानर भी जो है पर्वत के आकार के बानर थे जिनको चलना था। तो सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा पुल बनाया था और 3 दिन में बना, सोचिए 3 दिन में इतना बड़ा पुल तैयार हुआ था। ऐसा यश है, ऐसा अद्भुत यश है। श्री राम कथा महामहोत्सव की प्रभुपाद की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।